परम पूज्य महाराज श्री के चरणारविंद में वंदना करते हुए पद्म पुराण के कथा प्रसंग में पितृभक्ति की चर्चा करते हुए पिता के अलावे संतानों की कोई गति नहीं है। पिता जो कुछ भी करे, संतान के लिए जो कुछ दंड प्रदान करे, वह दंड भी उसके लिए अमृत तुल्य होता है, वह गाली भी उसके लिए आशीर्वाद तुल्य होता है। शिव शर्मा, जिनका पांचवा पुत्र सोम शर्मा है, वह पितृभक्ति का एक मिसाल है। उसका हृदय जैसे समुद्र का जल, जल से समुद्र भरा होता है, उसी तरह से पिता के स्नेह से भरा हुआ है। बाहर रूप से जितना भी पिता ताड़न करते हैं, लेकिन उसकी पिता के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं आती है, इस प्रकार की कथा है। तो पिता अथवा गुरु यदि ताड़न करता है शिष्य को, तो शिष्य के चरित्र में और निखार आता है, उसे घबराना नहीं चाहिए, वो उसके लिए ही है। आजकल तो बड़ी संतुलन की स्थिति होती है, तब जाकर के चलता है सब कुछ। लेकिन शिव शर्मा के पांच पुत्रों में से चार पुत्रों की परीक्षा हुई, जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो पिता ने कहा, बेटा मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूं, तुम लोग वास्तव में पितृभक्त हो, मैंने माया से तुम्हारी परीक्षा ले लिया, अब तुम ये बतलाओ कि चाहते क्या हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जननम, इस भव बंधन से आप मुझे मुक्त करा दो, मुझे गोलोक वास को आप भेज दो, मुझे गोलोक वासी बना दो, विष्णु का साहिज्य प्राप्त करा दो। पिता ने कहा कि वास्तव में तुम लोगों ने पितृभक्ति किया है, और पितृभक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न है, इसलिए तुम लोग वैष्णव धाम को जाओ, जहां विष्णु के भक्त जाया करते हैं। जैसे ही विष्णु शर्मा ब्रह्मविद थे, ब्रह्मज्ञानी थे शिव शर्मा, उनके ऐसे कहते ही दिव्य विमान आता है, और चारे चारे पुत्र उस विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के गोलोक वास को जाते हैं। पुत्रों ने कहा कि भाई पिताजी मैं हम लोग तो चाह रहे हैं, आप भी चलिए। उन्होंने कहा, नहीं, अभी जो मेरा छोटा पुत्र है जिसका नाम है सोम शर्मा, उसकी अभी देख रेख करना मुझे बाकी है कि उसकी पात्रता क्या है। पिता को अपने जीते जी सभी पुत्रों की व्यवस्था कर देनी चाहिए, योग्य बना देना चाहिए, क्योंकि ये जवाबदारी पिता की ही होती है। नहीं तो माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता शत्रु है और पिता वैरी है, जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। महाराज श्री तो सभी बच्चों को अपना बच्चा मान करके पढ़ाते हैं। यहाँ एक इतना चंचल बच्चा है, लेकिन यह भी बहुत कुछ पढ़ गया है, तो ये मैं देखता हूं। तो जो अध्ययन है, जो विद्या है, अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम च विद्या, अन्न खाने से क्षण मात्र की तृप्ति होती है, जो व्यक्ति भूखा होता है, लेकिन विद्या से तो आजीवन तृप्ति होती है। जब तक जीव रहता है तब तक उसे विद्या से ही तृप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान जैसा कोई पवित्र वस्तु नहीं है और भगवान को ज्ञानी भक्त ही प्रिय है। अब शिव शर्मा जी ने जो अपना छोटा पुत्र था, उस छोटे पुत्र की कसौटी के लिए यत्न किया, बोला बेटा यह अमृत का घड़ा है जो तेरे भाई ने इंद्रदेव से लाया है, तुम इसकी सुरक्षा करो, हम लोग दो चार दस वर्षों में तीर्थ यात्रा करके तपस्या करके वापस लौटेंगे, तब तक तुम इस हमारे अमृत घट की सुरक्षा करना। दुखम न्यासस्य रक्षणम्, किसी की कोई वस्तु हो उसकी रक्षा करना बड़ा कठिन काम है। माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए, पुत्र धर्मात्मा सोम शर्मा रात दिन जग करके उस घड़े की रक्षा करते थे, पिता की स्मृति में कब पिताजी आवे, कब पिताजी आवे, मेरा ये व्रत कब पूरा हो। जैसे भरत जी सोचते थे कि राम जी कब आवे ताकि हमारा थोड़ा भार हल्का हो, उसी तरह से सोम शर्मा चिंता कर रहे थे कि हमारे पिता कब आवे। पिताजी कुछ काल के पश्चात, दस वर्ष बीतने के पश्चात जब आए तो सोम शर्मा ने देखा कि पिताजी की हालत बड़ी गंभीर हो गई है, उनके सारे अंगों में कुष्ठ हो गया है और इधर उधर वो पूरा मवाद जैसी स्थिति है और बह रहा था। सोम शर्मा ने पूछा, पिताजी आपको ये क्या हो गया है, आप जैसे एक ज्ञानी महात्मा को ये क्या हो गया, बड़ा खेद व्यक्त किया, आपके आज्ञा से तो साक्षात देवता प्रसन्न हो जाते हैं, देवता आ जाते हैं, आपके आज्ञा से साक्षात विमान यहाँ से आकर हमारे भाइयों को ले गया, आखिर ये आपके शरीर में ये कुष्ठ कैसे हुआ, और फिर तो मेरी माता इतनी पतिव्रता है, उसका भी तपस्या का प्रभाव है, नित्य देवताओं का अतिथियों का पूजन करती है, तीर्थ यात्रा का फल तो कुछ उत्तम होता है और यहाँ तो विपरीत दिखाई दे रहा है। शिव शर्मा ने कहा, पिता बेटा तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं वो शोक नहीं करते हैं, गता सुन गता सुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। जो पंडित लोग होते हैं वो जानते हैं शरीर की जो दशा है वह क्षय के लिए ही है, यद भोगा यतनम तदेव शरीरम, जो भोग का आयतन मतलब घर है उसी का नाम शरीर है, इससे सुख की भी भोग होता है और दुख का भी भोग होता है, जितना सुख मिलता है उतना ही दुख भी मिलता है, सुख के प्राप्ति में दुख अधिक मिलता है, सुख के चिंता में दुख अधिक मिलता है, इसलिए बेटा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस शरीर से जितना बन पड़े पुण्य कर्मों को करते जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का साधन है, शरीर साध्य नहीं है, हम शरीर को साध्य समझ लेते हैं, इसलिए सब कुछ पापाचार अत्याचार करके शरीर के पोषण में लगाए रहते हैं। नहीं नहीं, इस शरीर से धर्म साध्य है और शरीर तो साधन है, साधन को तब तक रखना है जब तक साध्य की सिद्धि नहीं हो जाती है। ट्रेन पर हम तब तक चढ़े रहते हैं जब तक हमारा स्टेशन नहीं आ जाता है, स्टेशन आने के बाद हम ट्रेन को छोड़ देते हैं। तो हमें भी यत्न करना होगा कि ये जो साधन हमें मिला है इसके द्वारा जो धर्म है वह साध्य है। इसलिए आप चिंता मत करो, मैं धर्म कार्य करके आया हूँ, इसलिए पुण्यवान व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, जो पुण्य है वह व्यक्ति को रक्षा करते हैं। इसलिए तुम अपना कर्तव्य करो, तुम्हारा जो पिता के प्रति दायित्व है उसका तुम निर्वहन करो, तुम अपने पिता की सेवा शुश्रूषा करो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य करने का अधिकार है। फल की चिंता तुम मत करो। महाराज अब तो बड़ी तकलीफ हुई, पिताजी के शरीर से वो मवाद रक्त इत्यादि प्रवाहित हुआ करते थे। पुत्र सोम शर्मा अहर्निश सेवा करते, सुबह उठ करके स्नान कराते, मल मूत्र आदि तक साफ करते, भोजन बनाकर कराते। एक की तबीयत खराब हो तो समझ में आती है, पिता की खराब हो तो माता सेवा कर देगी, माता का खराब हो तो पिता कर देगा। ये दोनों के दोनों की सेवा सोम शर्मा को करनी पड़ रही है। स्नान कराते, स्नान करा करके कपड़े पहनाते, सेंट वगैरह लगाते, चंदन लगाते, भोजन पकाकर खिलाते, उठाते बैठाते, ये सब सारी शारीरिक सेवा, सुबह से लेकर के रात तक सोने तक की सेवा सोम शर्मा जी करते थे। लेकिन पिताजी भी यम दंड लेकर खड़े हो जाते थे, जैसे जमराज का डंडा हो ना, उतना ही गुस्सा करते थे, उतना ही मारते थे। जो जो नहीं कहना चाहिए वो कहते थे, गालियां देते थे। फिर भी सोम शर्मा के मुंह से कभी भी पिता के प्रति कोई अपशब्द नहीं निकला। अब ऐसा प्रक्रम 6-7 महीने तक चला, गाली भी देते थे तो उनके पिता बच्चे सोम शर्मा मीठी वचन से ही बोलते, कोई बात नहीं पिताजी गलती हो गई, फिर से सुधार लूंगा। गलती तो वो करते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी ये डंडा मारा करते थे उसकी परीक्षा के लिए। शरीर में गलित कुष्ठ कर लिए अपने माया से, इसकी परीक्षा तो करे ये है क्या। एक दिन पिता का हृदय द्रवीभूत हो उठता है, बहुत डंडा मारा, उसके बाद भी पुत्र कहता है, पिताजी ये सब आपका प्रसाद है, ये सब मेरे उन्नति के लिए ही है। पिता के आंखों से अश्रुपात हो उठते हैं कि धन्य हो तुम पुत्र, मैंने हर प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ले लिया और उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए हो। इस प्रकार का जिस पुत्र का सदाचार होगा उसका बेड़ा हमेशा इस धरती से पार होने वाला है, वह कभी भी भवाटवी में विचरण करने वाला नहीं है। बेटा तुमको मैंने जो अमृत कलश सौंपा था, अब वो तुम अमृत कलश मुझे लाओ और मैं उसका पान करूंगा। इसके बाद सोम शर्मा अमृत कलश को लाने के लिए जाते हैं। महाराज देखते हैं अमृत कलश खाली हो पड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है अमृत का। अब कठिन परीक्षा की घड़ी। कहा सोम शर्मा ने कि मेरा जितना सामर्थ्य था उसके अनुरूप मैंने सेवा किया, और यदि मेरी सेवा वास्तविक में सत्य होगी तो इस घड़े में मेरे पिता के लिए अमृत आ जाए। थोड़े क्षण में ही देखते देखते वह घड़ा जो है अमृत से भर जा रहा है, और वह लाकर सोम शर्मा अपने पिता को प्रणाम करके कहते हैं, पिताजी यह लीजिए अमृत कलश, और इसको पान करके आप रोग मुक्त हो जाइए।